ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा से आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 का वार्षिक बजट बहुमत से पारित। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में सरकारी निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। सरकार द्वारा अध्यागमन और विजिट वीजा मामले से संबंधित उच्चस्तरीय अध्ययन और जांच समिति का गठन। कृषि व्यवसाय को प्राथमिकता देते हुए युवा जनशक्ति को प्रोत्साहन देने पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिया जोर। और इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम होने के बावजूद तनाव बना हुआ है। युद्ध विराम तोड़ने न देने की अमेरिका की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा से आज आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 का वार्षिक बजट पारित किया गया। प्रतिनिधि सभा की बैठक में अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल द्वारा पेश किए गए विनियोजन विधेयक 2082 को पारित किया जाए प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकृति मिली। इसी बैठक में अर्थमंत्री पौडेल द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक 2082 और राष्ट्रीय ऋण उठाने के विधेयक 2082 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव भी पारित हुए। बैठक के दौरान विनियोजन विधेयक पर चर्चा के क्रम में सांसदों द्वारा रखे गए खर्च में कटौती के प्रस्तावों को बहुमत से खारिज कर दिया गया। सरकार द्वारा पिछले जेठ 15 को संघीय संसद की संयुक्त बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के अंतर्गत बजट शीर्षकों पर चर्चा के दौरान उठे सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि लंबे संघर्ष और बलिदान से प्राप्त वर्तमान संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था और संविधान का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा अतीत के संघर्षों और शहीदों का अपमान, प्रणाली का अपमान और संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सांसदों से इन मुद्दों पर संयम बरतने की अपील की। बजट पर चर्चा के दौरान उठे सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण सभी को संतुष्ट करने वाला सर्वसम्मत बजट संभव नहीं होता और इसकी आलोचना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा सभी को विकास चाहिए लेकिन बजट कम होने के कारण विकास की गति धीमी दिखाई देती है। सरकार इसके प्रति सजग है और सरकारी निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आषाढ़ 14 गति शनिवार को सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आह्वान में आज बालोटार में हुई सत्तापक्षीय राजनीतिक दल की बैठक के संघीय संसद में प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2082 पारित करने का निर्णय किया गया था। सरकार ने अध्यागमन और विजिट वीजा प्रकरण से संबंधित मामलों की जांच के लिए पूर्व मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन एवं छानबीन समिति का गठन किया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक की शुरुआत में ही समय मांगते हुए सांसदों द्वारा समसामयिक मुद्दों पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री रमेश लेखक ने बताया कि इस समिति में 6 मंत्रालयों के सहसचिव भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि ट्रांजिट और विजिट वीजा प्रणाली से जुड़ी पिछली समस्याओं का समाधान करने, नीतिगत कानूनी और संरचनात्मक सुधार के लिए ठोस पहल करने के उद्देश्य से ये समिति बनाई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद में उठाए गए सभी मुद्दों की पहचान कर दीर्घकालीन समाधान निकालने के लिए समिति को 9 कार्य दिशाएं दी गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि विदेश से लौटे युवाओं द्वारा सीखे गए कौशल का उपयोग करते हुए उन्हें कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि कृषि व्यवसाय को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रपति पौडेल ने सक्रिय किसानों को राष्ट्रीय उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार और सम्मान पत्र प्रदान किए। ये समारोह कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसानों को सम्मानित करने और युवाओं को कृषि व्यवसाय से जोड़ने के लिए आयोजित किया गया था। नेकपा एमाले की सचिवालय बैठक कल के लिए बुलाई गई है। ललितपुर के चैसल स्थित एमाले केंद्रीय कार्यालय में दोपहर 1 बजे सचिवालय की बैठक बुलाई गई है। ये जानकारी एमाले के केंद्रीय कार्यालय के सचिव डॉ भीष्म अधिकारी ने दी। एमाले ने आगामी भादर 20-22 गति तक विधान महाधिवेशन ललितपुर के गोदावरी में करने का निर्णय किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। मोरङकी बुढ़ी गंगा गाउँपालिका स्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ने आयुर्वेदिक दवा उत्पादन की तैयारी शुरू की है। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ने नेपाली जड़ी बूटियों का उपयोग करके मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवाओं के उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ सुहासश्री पोखरेल ने दी। विश्वविद्यालय ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में मधुमेह सहित 10 विभिन्न विषयों पर अपनी प्रयोगशाला में शोध कर आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन शुरू करने की तैयारी की है। विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के तहत 322 छात्र अध्ययनरत है। कोशी प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम संवत 2076 में स्थापित ये विश्वविद्यालय नेपाल का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है। ये पहल नेपाल के पारंपरिक जड़ी बूटियों के उपयोग को बढ़ावा देने और आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य पूर्व में तनाव जारी है, भले ही इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू हो चुका है। अमेरिका ने दोनों देशों को युद्ध विराम भंग न करने की सख्त चेतावनी दी है। हालांकि आधिकारिक युद्ध विराम लागू है, दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप और सैन्य तैयारियां जारी है। ईरान ने इसराइल पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है, जबकि इसराइल ईरानी समर्थित गुटों की गतिविधियों को लेकर चिंतित है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध विराम भंग करने वाले को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने इसराइल और ईरान दोनों से संयम बरतने की अपील की है। यदि तनाव बढ़ता है तो पूरे मध्य पूर्व में हिंसा फैल सकती है, जिससे तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से शांति वार्ता को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा से आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 का वार्षिक बजट बहुमत से पारित। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में सरकारी निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। सरकार द्वारा अध्यागमन और विजिट वीजा मामले से संबंधित उच्च स्तरीय अध्ययन और जांच समिति का गठन, कृषि व्यवसाय को प्राथमिकता देते हुए युवा जनशक्ति को प्रोत्साहन देने पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिया जोर, और इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम होने के बावजूद जो तनाव बना हुआ है, युद्ध विराम तोड़ने न देने की अमेरिका की चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।